Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ham yaha aj samavete kis udeshya se kyon aap sabhi log yaha hai? बहुत से लोग बोलते हैं कि हम साधु का दर्शन करना चाहते हैं. दर्शन का मतलब देखना. देखिए, परंतु पूर्ण साधु दर्शन आंखों में से नहीं है, कानों में से. यथा श्रीमद् भागवत में सुतीक्षित पथ, अर्थात देखना श्रवण करने से. और साधु क्या कहेंगे? साधु जो सब कुछ जो कहते हैं तो दूसरे का कल्याण का हेतु से कहते हैं. और कैसे सबका कल्याण हो सकते हैं? मानव सेवा. मानव सेवा क्या? मानव सेवा का अर्थ शारीरिक सेवा. परंतु भगवद गीता में भगवान कृष्ण का प्रथम उपदेश है कि शरीर और शरीर ही भिन्न है. यदि मैं वो आप जो फोटो खींचते हैं, क्या नाम है? संपत. संपत. संपत क्या आपका नाम है या आपका शरीर का नाम? क्या उमर? उमर हाँ, उमर आपका उमर, एज, वायस 23, 23. तो 24 साल के पहले आप क्या संपत था? 25 साल के पहले हाँ नहीं. परंतु आप थे, क्योंकि आप सनातन जीव है. अभी जब तक वो शरीर चलेगा, अभी 23 साल हो गया, उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इतना सा नहीं होगा. संभावना है. परंतु जो आप जो जैसे ही सोचते हैं मैं संपत हूं, परंतु वो दैहिक संबंध से वो उपाधि है संपत. परंतु आप जो जीव है, मैं आपके बारे में कहता हूं, लेकिन ये एक उदाहरण है जो सबके लिए योग्य है. तो हम सोचते हैं कि मेरा यही नाम है. आईना में हमारा प्रतिदिन हमारा सुंदर चेहरा देखते हैं. और क्या मैं यही मकान में रहता हूँ और यही मेरी पत्नी है, या पत्नी सोचते ये मेरा स्वामी है? और इस प्रकार हमारा परिचय हम पूर्णतया देह के साथ सृष्टि करते हैं. परंतु हमारा वास्तविक परिचय हम भगवद गीता का प्रथम उपदेश से ही सीखना चाहिए. भगवान कृष्ण का प्रथम उपदेश, जिसमें भगवान कृष्ण दो शब्द कहते हैं, देह और देही, ये एक देह शरीर है, और शरीर कैसे चलते हैं? आधुनिक विज्ञान से हम समझ जाते हैं कि शरीर में अलग अलग केमिकल्स है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन बहुत है, और हैदराबाद में खास बहुत लेड है, और भिन्न भिन्न केमिकल्स रसायन से बनाए हुए है शरीर। परंतु मैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि नहीं हूँ, और आप भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि नहीं है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि तो अपने से नहीं चला सकते, जैसे कार में कार चलते है और चालक है, तो इसी प्रकार शरीर में चालक है, वो चालक है आत्मा, और आत्मा सनातन है। आपका जन्म, यही जन्म के पहले आप अन्यत्र थे, दूसरी स्थिति में थे, दूसरे शरीर में थे, और यही शरीर का मरण जो अनिवार्य है, असंभव अनिवार्य है, वो उसके बाद भी आप रहेंगे। ये भगवद गीता का प्रथम उपदेश है, और आप सब विश्वास करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सब जन्म के अनुसार सब हिंदू है, ऐसा है, हिंदू, शायद कुछ जैन, सिख, लेकिन आप सब विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में लोग ऐसे मानते हैं, और हैदराबाद में बहुत है जो अन्य धर्म पालन करते हैं, मुसलमान, जो विश्वास नहीं करते हैं। तो क्योंकि आप हिंदू है, आप विश्वास करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे अर्जुन अच्छी तरह समझ गया कि पुनर्जन्म होते हैं, ये विश्वास का मामला नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं और नहीं होते हैं, तो विश्वास सही नहीं होगा, और अगर आप विश्वास नहीं करते हैं और पुनर्जन्म होते हैं, तो अविश्वास करने से कि पुनर्जन्म होते हैं तो बल नहीं होगा। अर्थात ज्ञान जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण देते हैं वो विज्ञान है, अर्थात बुद्धि से ही समझना चाहिए, अंधविश्वास से नहीं है। सब जो ऐसा है, जो सब जो हिंदू है मानते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, ऐसे होते हैं, ऐसा होते हैं क्या? सब ऐसे कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा है कि वास्तव में कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि सब ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं जिससे यही जीवन सब कुछ है, काम करते हैं और पैसा कमाते हैं और सब कुछ करते हैं जिससे यही जीवन में हम सुखी रहेंगे, जो संभव नहीं है। सुख कहा है? मृत्यु संसार में सुख कहा है? परंतु हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि भगवद गीता का उपदेश बार बार सुन के भी हम वास्तव में उसमें विश्वास नहीं रखते। हम हमारे जीवन व्यतीत करते हैं जिससे जो संसारिक बातें, सब कुछ जो चलते वो ही महत्वपूर्ण है, और कि कुछ दिन के बाद इस शरीर का मृत्यु होगा उसके बारे में हम नहीं सोचते, और उसके बाद क्या हुआ कुछ दिन के बारे में वो भी निश्चित नहीं है। अब ही यही क्षण में कभी भी हो सकते, और वो क्षण आएगा, परंतु हम सोचे बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में होगा, हम ऐसे सोचे बाद में किंतु वो समय आएगा जिसमें बाद में तो बाद में नहीं होगा, अभी अभी होगा। वो समय आएगा और उसी समय यमराज के दूतों आते हैं, अथवा यदि हम जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति तीव्रता से किए तो विष्णु दूतों हमको वैकुंठ के ओर ले जाएंगे, और लोग जो कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं, जो एक बार भी जीवन में कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं करते, तो ऐसे लोग का यमराज के पास जाना पड़ेगा। ऐसे सोचिए मत कि वो सब वर्णन जो शास्त्र में है, पुराण शास्त्र में है, कि नरक है, स्वर्ग भी है और नरक भी है, वो सब काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है। ये कुछ लोग जो बोलते हैं मैं नरक ऐसे कोई स्थान नहीं है, ये सब पूर्व काल में लोग बुद्धिहीन थी और ऐसे ही सोचते थे, लेकिन देखिए कि अभी यही पृथ्वी पर नरक जैसे परिस्थिति है। अभी पैलेस्टाइन में क्या नरक अच्छा है या पैलेस्टाइन अच्छा है? दोनों नरक जैसे है। और वो जीव जो मानव जीवन में अत्यंत पाप कर्म करते हैं, तो उसी प्रकार शरीर प्राप्त करते हैं जो नारकीय है, जैसे कुछ कीड़ा है जो मल में रहते हैं, विष्ठा में रहते हैं। आत्मा का स्वभाव सच्चित आनंदमय है, परंतु यदि हम अत्यंत बड़े पापाचारी हैं, तो वो पाप कर्म का फल से हम सुअर का शरीर प्राप्त कर सकते हैं, या सुअर का मल में खीरा हमारे शरीर में बहुत खीरा है, किस प्रकार जानना? ऐसे होते ये सब समझना चाहिए। ये भगवद गीता का प्रथम उपदेश है। और है ऐसे लोग जो सोचते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है, परंतु भगवद गीता में उपदेश क्या है तो नहीं जानते हैं। और यदि हम घर घर जाकर सबको भगवद गीता देने चाहते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ हमारे पहले से बहुत साल से हमारे घर में भगवद गीता है, और है भगवद गीता उनका घर में है, लेकिन उसको कभी भी नहीं खुलते, वो खाली है घर में। हम हिंदू हैं इससे हम घर में भगवद गीता रखते, तो यही मंदिर इस्कॉन श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन संस्थ का एक मुख्य उद्देश्य है भगवद गीता का अनमोल ज्ञान परिवेशन करना, सिखाना सबको, क्योंकि यही ज्ञान का अभाव से बहुत लोग जो स्वभाव से पुण्यशाली है, अज्ञान का ओर जा रहा है, क्योंकि कलयुग में धर्म का नाम है बहुत डोंगे आते हैं, बहुत लोग जो धर्म का प्रचार का नाम में अधर्म का प्रचार करते हैं। यदि ऐसा कहूँगा तो कहीं बार मैं ऐसा बताया था इस प्रकार साधु संघ में कि एक बाबा था आंध्र प्रदेश में जो सब उसको भगवान बोलते, लेकिन वो भगवान नहीं था, लेकिन बहुत लोग जो पुण्यशाली थे उसको भगवान जैसे मानते थे। वो बहुत बड़ा अपराध है वास्तविक भगवान के प्रति। भगवान कौन है, कैसे हम भगवान का परिचय हम समझ सकते हैं? शास्त्र से सब ज्ञान, वास्तविक ज्ञान शास्त्र में है। तो भगवान शब्द का अर्थ विष्णु पुराण में है, यथा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नं भागे इतिंगिना। जो भगवान है इनमें पूर्ण ऐश्वर्य है, भगवान का कुछ अभाव नहीं है, पूर्ण वीर्य शक्ति है, वीर्य या शशा पूरी कीर्ति है भगवान की। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, केवल पृथ्वी में नहीं है, दिव्य लोक में, स्वर्ग लोक में भी सब देवगण वास्तविक भगवान विष्णु कृष्ण की स्तुति करते हैं। यशस श्रेयः, श्रेय का मतलब सुंदरता। तो वो भगवान जो लोग बोलते है वो भगवान है, बहुत खस असुंदर था, तो कैसे भगवान हो सकता? परंतु लोग तो बुद्धि ना लगा के, बुद्धिहीन लोग, बुद्धिहीन भाव से एक अभगवान लोग जो भगवान नहीं है उसको भगवान बोलते हैं। बुद्धिमान है बहुत लोग जो उसमें विश्वास करते थे, बुद्धिमान ऐसे बहुत बड़े ऑफिसर साइंटिस्ट, तो भौतिक ज्ञान में बहुत निपुण तत्पर होते हुए भी आध्यात्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास से चलते हैं, ऐसे ही बहुत लोग होते हैं तथाकथित हिंदू धर्म में। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता में वो ज्ञान जो है वो सर्वोत्तम ज्ञान है। उस प्रकार ज्ञान आप दुनिया की दूसरे धर्म के शास्त्र में प्राप्त नहीं करेंगे। कि पुनर्जन्म होते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम होते हैं, और कैसे होते हैं ये ज्ञान भगवद गीता में उपलब्ध है, और विस्तार से श्रीमद् भागवत में। ये ज्ञान बाइबल में है कुछ तरह से इंगित है, परंतु पूर्ण ज्ञान नहीं है, और कुरान में भी नहीं है। तो आपके पूर्व पुरुष सब ऋषि मुनि ज्ञानी थे, तो क्यों आप अंधविश्वास से किसी डोंगी मूर्ख को भगवान को ग्रहण करना चाहते हैं? आपको ज्ञानी होना चाहिए। यही भारत में भगवान कृष्ण भगवद गीता अर्जुन को बताए, और यही भारत में परंपरा में से वो ज्ञान आ रहा है, तो आप क्यों ग्रहण नहीं करते? ग्रहण करने चाहिए, जिससे आपका परम कल्याण होगा। आप सब खुद का कल्याण चाहते हैं, और यहाँ पर अधिकांश गृहस्थ है, तो आपके कुटुंब के लिए, आपके बच्चे के लिए आप हित चाहते हैं। आपके बच्चे के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, बहुत चिंता होती है संसार परिवार चलाने में, तो आप इतना सा उत्सर्गित होते हैं आपका परिवार के लिए, उनका कल्याण के लिए, तो उनका परम सनातन कल्याण कैसे होगा इसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि यदि आप आपके बच्चे को अच्छा खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा शादी में देते हैं इत्यादि, परंतु आपके बच्चे का कुछ भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और उसका अभाव से उनका मृत्यु के पश्चात वे पशु योनि में प्रवेश करेगा, तो क्या कल्याण हुआ? इसके बारे में सोचना चाहिए। यही श्रील प्रभुपाद का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक मुख्य उद्देश्य है। हम मंदिर स्थापन करते हैं, लोग जो पुण्यशाली है अच्छा लगता है मंदिर आना, श्री श्री राधा कृष्ण गौर निताय जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का दर्शन करना, कीर्तन करना, प्रसाद ग्रहण करना, ये सब अच्छा लगता है। परंतु जिससे आपका परम और सनातन कल्याण हो जाए, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि आप केवल आप यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं, और शायद कुछ माला भी करते हैं, परंतु वो तो पूर्ण नहीं है। शिक्षा लेने चाहिए, परमार्थिक शिक्षा। तो बच्चे तो 3 साल वयस से तो प्री के जी भेजते हैं, और उसके बाद प्री के जी के जी, उसके बाद स्कूल, क्या मैट्रिक पास, सेकेंडरी पास, उसके बाद यूनिवर्सिटी इत्यादि। कितने साल बच्चे कितने साल पढ़ते हैं? कम से कम 20 साल ऐसे होते हैं, 20 साल 20 साल पढ़ते हैं, परंतु उससे कुछ भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलते हैं। और आप जो पिता माता है, आपका मुख्य कर्तव्य है बच्चे के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, तो उसी दिशा में भी आप नजर रखिए, नहीं तो आपका कर्तव्य पिता माता होने से तो पूर्ण नहीं होते हैं। आप चाहते हैं आपके बच्चे और सब जिससे सब कुछ अच्छा होगा, परंतु हम देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है, तो अच्छा डिग्री है, अच्छा नौकरी है, यदि नौकरी अच्छा हो सकता है, या काफी पैसा है, जैसे तैसे व्यापार करते है इत्यादि, परंतु मन में शांति नहीं है। बहुत ऐसे है, कल परसों में एक दूसरा शहर में था भारत में, और एक व्यक्ति और उनकी पत्नी मुझको बताया कि कुछ साल के पहले हमारी बच्ची जिसका वायु 17 वर्ष की लड़की तो अचानक सुसाइड किया। क्या कारण था हमें मालूम नहीं, तो बाहर से देखते कि वो चलते ही कुछ खास समस्या नहीं है, क्या हुआ हम अभी तक नहीं जानते। तो ऐसा होता है बहुत। मैं देखता हूँ कि विशेषकर ऐसे लोग जो दूसरे ही सोचते हैं तो वो सुखी है, खुशी है, उसका जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, दुख नहीं है, तो ऐसे और पैसे वाले लोग भी, तो विशेषकर उस प्रकार लोग सुसाइड करते। तो सब लोग तो सुसाइड नहीं करते, लेकिन यदि हम दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके वो साधना नहीं करते हैं जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखमय संसार चक्र से मुक्त नहीं होंगे, तो वो भी सुसाइड है। इसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, नृदेहमाद्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पो गुरु कर्णधारं मायानुकूलेन रभस्वचरितं पुमान भवब्धिं नतरेत् स आत्मः। आत्मः शब्द का मतलब आत्महत्याकारी। तो कौन है आत्महत्याकारी? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ, और जो अभी मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु वो अवसर जो है मानव जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से बचाने के लिए, तो ऐसे लोग आत्महत्या जैसे करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से सब उपदेश उपलब्ध है, विशेषकर गुरुजन का माध्यम से, शास्त्र का माध्यम से। तो लोग जो सुवर्ण अवसर प्राप्त करके भी मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग आत्महत्याकारी। मोक्ष एक शब्द है जिसका अर्थ आप सब जानते हैं। इस्कॉन में हम जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, इस्कॉन में हम मोक्ष को इतना सा महत्व नहीं देते हैं जैसे दूसरे धार्मिक संस्थान देते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् भागवत से हम जानते हैं कि मोक्ष है अत्यंत दुख निवृत्ति। दुख से, जन्म जन्मांतर दुख से बचाना, परंतु मोक्ष केवल प्रथम सोपान है। मोक्ष के ऊपर और भी उपलब्ध है। वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे तृण तुल चारि पुरुषार्थ। चारि पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म धर्म पालन करना चाहिए, यदि हम धर्म पालन नहीं करते हैं हम द्विपद पशु है, हम असभ्य है यदि हम धर्म पालन नहीं करते। और अर्थ पैसे का माने है मानव जीवन में, काम काम वो भी मानव जीवन का एक लक्ष्य है, परंतु ये तीनों के ऊपर है मोक्ष। परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये चारों के ऊपर और बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण विषयक प्रेम। भौतिक संसार में प्रेम होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, एक युवक से एक युवती, तो इस प्रकार प्रेम पिया होती है। परंतु कृष्ण विषयक प्रेम वो संपूर्ण सनातन असीम प्रेम है, प्रेम जो भौतिक संसार में होते हैं उसमें दो मुख्य दोष है। पूरा भौतिक संसार में दो मुख्य दोष है कि भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम। भौतिक संसार का मुख्य लक्षण है कि संसार दुखमय है और अशाश्वत, यहाँ पर कुछ नहीं, किसी भी चीज नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार भौतिक संसार में सब कुछ जो प्रेम का नाम चलता है वो प्रेम, हम दूसरे से प्रेम करते हैं परंतु उससे दुख प्राप्ति होती है और अशाश्वत। एक युवती युवक से विवाहित होती है परंतु वो संबंध जो है विवाह से वो नहीं रहेगा, सब कुछ जो भौतिक संसार में है काल महाकाल से सीमित है। एक दूसरा महान दोष है भौतिक प्रेम में, और प्रेम के साथ ईर्ष्या आते हैं, जैसे भारत माता की जाए हम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग का मन में ऐसा सोच है कि यदि हम सही भारतीय है तो हमें पाकिस्तानी को नफरत करना चाहिए, नहीं तो पूरा भारत का प्यार नहीं हो सकते, पाकिस्तान को ईर्ष्या करना चाहिए। इस प्रकार भी हिंदू और मुसलमान के बीच ईर्ष्या चलते हैं। तो पूर्ण प्रेम में ईर्ष्या, हिंसा, घृणा बिल्कुल नहीं है। तो भौतिक प्रेम जो प्रेम का नाम में चलता है वो अपूर्ण है और दोषयुक्त है। कृष्ण भगवान पूर्ण है और दोषहीन है, और वो प्रेम संबंध जो कृष्ण और जीव में है वो ही सनातन धर्म है। वो प्रेम पूर्ण दोषहीन है, सनातन है। और कृष्ण की भक्ति जिसका परिपक्व फल कृष्ण प्रेम है, वो कृष्ण भक्ति से वो मोक्ष जिसकी प्राप्ति बहुत कठिन होती है अन्य साधना रीति से आसाने से होते हैं कृष्ण भक्ति से. कृष्ण भक्ति से वो कठिन दुर्लभ मोक्ष आनुषंगिक फल कृष्ण भक्ति की. तो हम जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी है ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, तो हमारा एक उद्देश्य है जैसे हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये सब शिक्षा मिली तो दूसरों को सिखाना. ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है सब भारतीयों को. चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि से होलो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो फर उपका. चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो भारत में मनुष्य जन्म प्राप्त किया उनका भाग्य है, आपका भाग्य है, क्योंकि ये संस्कृति, ये धर्म, ये कृष्ण भक्ति आप सबों के लिए ये सब ग्रहण करना बहुत आसान है. कृष्ण भक्ति आपका खून में है. मैं कुछ दिन के पहले अमेरिका में था और वहाँ पर भी हम प्रचार करते हैं और कुछ लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, परंतु वातावरण यहाँ से विपरीत है. वहाँ पर सब लोग पक्के इंद्रिय भोग विलासी है और यहाँ पर लोग प्रयास करते हैं, परंतु अमेरिकन लोग जैसे इतना पतित होना आपके लिए कठिन होते, आपका भाग्य है. तो आप आसानी से ये कृष्ण भक्ति ग्रहण कर सकते हैं. इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेषकर भारतीयों को आदेश प्रदान किया जन्म सार्थक करी करो पर उपकार. कृष्ण भक्ति से आपका दुर्लभ मानव जन्म सार्थक करे, सफल बनाए और करो पर उपकार. पर उपकार का मतलब मानव सेवा, सब जीव की सेवा. कैसे सब जीव की सेवा हो सकती? कृष्ण भक्ति ज्ञान प्रदान करने से. तो यही चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, यही इस्कॉन का उपदेश है और हमारा अनुरोध है, हमारी विनती है आप सभी भक्तों से, आप पूरी गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति आपका जीवन में ग्रहण करें. इस प्रकार आप और आपका आपके सब परिवार के सदस्यों का जीवन कृष्ण भक्ति से पूर्ण करें, सुखमय बनाए और इस प्रकार आपका जीवन सफल होगा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण. यदि किसी का प्रश्न है जरा सा हाथ उठाए और हम आपको माइक दूंगा. प्रश्न नहीं है. अधिक जानकारी के लिए श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण महाराज जी. महाराज जी, क्या ये देह रहते हुए हम भगवान को, इस देह के रहते हुए हम भगवान को महसूस कर पाएंगे? क्या देह छूटने के बाद ही भगवान को महसूस कर पाएंगे कि वो है?
देह का माध्यम से हम भगवान को महसूस कर सकते हैं. भगवत अनुभव आत्ममय से होते हैं. जब तक हम देहधारी हैं तब तक हमारी सब अनुभूति देह का माध्यम से होते हैं, परंतु भगवत उपलब्धि आध्यात्मिक होते हैं, आत्मा की बात है। यही देह में हम भगवान देख सकते हैं, यदि भगवान की कृपा हो। ये शरीर पूरा भौतिक है, कृष्ण भक्ति से पूरा आध्यात्मिक हो सकते हैं, यदि हम पूरा शरीर कृष्ण की भक्ति में अर्पण करेंगे।
हरे कृष्णा। मेरा सवाल है कि
ठीक है बोले।
मेरा सवाल है कि जब हम कृष्णा भक्ति की बात करते हैं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारे मन में आता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि जब हम कृष्णा के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि अरे हनुमान जी के बारे क्यों नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, हम श्री गणेश के बारे क्यों नहीं सोच रहे हैं, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं।
हनुमान कौन है समझना चाहिए। बहुत लोग हनुमान की भक्ति भी करते हैं, लेकिन करते हैं भौतिक लाभ के भी खेले है। उस प्रकार की भक्ति पूर्ण भक्ति नहीं है। हनुमान भगवान राम जी के आदर्श सेवक हैं। उसी रूप से यदि हम हनुमान की भक्ति करेंगे, वो भी राम की भक्ति है। बहुत कुछ जो भक्ति का नाम में चलते हैं, बहुत कुछ स्वार्थ के लिए चलते हैं। प्राय सभी लोग जो हनुमान की पूजा करते हैं तो स्वार्थ के लिए करते हैं, परंतु देखिए हनुमान का क्या आदर्श है। हनुमान राम जी की सेवा की किस लिए, केवल राम की प्रीति से, स्वार्थ के लिए नहीं है। तो हनुमान से हमें सीखना चाहिए किस प्रकार राम भगवान की सेवा करनी चाहिए। हनुमान जो इतना बलवान है राम की सेवा में, और यदि हम हनुमान जो सब कुछ केवल राम का सुख के लिए करना चाहते हैं, यदि हम कुछ भौतिक हनुमान से लेना चाहते हैं, वो चोरी जैसे है, क्योंकि हनुमान की इच्छा नहीं है हमको भौतिक संसार में डालना। हनुमान की पूरी ध्यान है राम की भक्ति में, तो क्यों हम हनुमान को डिस्टर्ब करेंगे हमारे तुच्छ स्वार्थ के लिए। वो भक्ति नहीं है, आपको सीखना चाहिए गीता भागवतम। गीता भागवतम उसके बारे में, हाँ एक और प्रश्न है वह।
प्रभु जी, डिफरेंस बिटवीन गॉड शिवा एंड श्री कृष्ण।
डिफरेंस बिटवीन शिवा एंड कृष्ण, शिवा और कृष्ण में क्या अंतर है। शिव और कृष्ण में अंतर नहीं है और है, संभव है क्या?
संभव है, दोनों
संभव है। इस प्रकार मैं बताता हूं, जैसे शास्त्र में एक श्लोक है, क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथक् अस्ति हेतो या शम्भुतम् अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। दूध और दही में अंतर है नहीं, दही क्या है, खाली दूध, परंतु अंतर है। तो उसी प्रकार शिव और कृष्ण में अंतर है और नहीं है,
वो सेम टाइम पीरियड के थे या अलग टाइम पीरियड के थे?
आपको सीखना चाहिए। यदि मैं कहूँगा सेम टाइप है अलग टाइप है, उसका बोलने से आप क्या समझ लेंगे? ये बहुत गहरे तत्व है, सीखना चाहिए।
ओके गुरुजी, थैंक यू।
यू हैव टू लर्न। जैसे यदि मैं प्रोफेसर आइंस्टाइन के पास जाकर बोलता है कि E=mc², तो एक मिनट में ही मुझको समझाए, संभव होगा क्या? तो शिव कृष्णा ये सब तत्व बहुत गहरे हैं, तो आपको सीखने चाहिए।
थैंक यू प्रभु।
संक्षेप में ऐसे समझना चाहिए, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्णा सब विष्णु रूप और सब कुछ जो है सबके मूल स्रोत है। शिव भी सनातन है, शिव भगवान राम के सनातन दास, राम जो कृष्ण के एक अभिन्न अभिव्यक्ति है।
थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।
राधे कृष्ण प्रभु जी, पूर्ण मोक्ष
महाराज
जी, पूर्ण मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मरण क्या जो प्रक्रिया होता है,
पूर्ण मोक्ष प्राप्ति
कैसे कर सकते हैं और ये जो जन्म मरण जो प्रक्रिया चलता है इससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी,
कैसे मुक्ति प्राप्त करें? ऐसे बताया कि पूर्ण कृष्ण भक्ति करने से मोक्ष प्राप्ति एक आनुषंगिक फल है, आसानी से भक्ति से मुक्ति होती है। जो मुक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन होते हैं, तपस्या ज्ञान मार्ग पालन करने इत्यादि से, तो कृष्ण भक्ति करने से एक आनुषंगिक फल है। मुक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है सेवा, कृष्ण सेवा। वो सब ये सब शब्द हम कहते हैं, परंतु ये समझने के लिए सीखना चाहिए। ऐसे ही सब लोग ऐसे कहते हैं भक्ति मोक्ष, लेकिन ये सब शब्द का क्या गहरा अर्थ है तो नहीं समझते। जैसे सब लोग जानते हैं E=mc², सब लोग सुना है E=mc², सब पहले से सुना है ना E=mc², सुना है सब लोग सुने, कम से कम जो स्कूल में फिजिक्स पढ़ते हैं E=mc, लेकिन उसका मतलब क्या है? सब ऐसे और सब जानते हैं पानी क्या है H2O, एक मॉलिक्यूल पानी में दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम, लेकिन कैसे वो चलते हैं उसके बारे में सीखना चाहिए। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दूसरे प्रकार का पानी है H2O2 हैवी वाटर बोल्ड H2O2 अनदर आइसोटोप और समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली। तो जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत गहरा विषय है, तो भगवत तत्व ज्ञान भी संबंध जो है भगवान और हम जो जीव, वो संबंध है, वो स्वाभाविक संबंध, प्रेम का संबंध है। परंतु हम भौतिक संसार में हम सब पागल जैसे है, और लोग जो mentally disturbed, मानसिक रोगी, वो जैसे normal हो सकते हैं और जिससे normal हो सकते हैं उसको पुनः शिक्षण देना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा स्वाभाविक संबंध है कृष्ण भगवान के साथ, लेकिन क्योंकि हम बुद्धग्रस्त जैसे हैं, इसलिए हमें विशेष ट्रीटमेंट देना चाहिए, चिकित्सा, जिससे हमारे मन ठीक हो जाए। हरे कृष्ण।